ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। केंद्र ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास छठी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दी। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक सरकारी कार्यालय में शिकायत पेटी लगाने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 दंगा पीड़ितों की कॉलोनियों में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की दिल्ली में चल रही प्रतियोगिताओं का आज समापन। महाराष्ट्र 54 स्वर्ण और 43 रजत सहित 141 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे के पास देश की छठी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये इकाई भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत HCL और फॉक्सकॉन संयुक्त रूप से स्थापित करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह होगी। उन्होंने कहा कि जेवर में नई सेमीकंडक्टर इकाई में 3,700 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा।
जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पांचों में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL, आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, और फॉक्सकॉन, उन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। दिस ज्वाइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स।
श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप में विद्यार्थी और उद्यमी नए उत्पादों के विकास के लिए विश्वस्तरीय नवीनतम डिजाइन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में न्यायमूर्ति BR गवई को पद की शपथ दिलाई।
मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता शून्य रखूंगा।
न्यायमूर्ति गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल कल समाप्त हो गया था। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करने पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि श्री गवई का न्यायिक अनुभव, संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण और न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता न्यायपालिका को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। डॉ कुमार एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने पूर्व में अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया था। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित पहलगाम आतंकी हमले के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के भारतीय सैन्य कर्मी के एक दावे के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि वीडियो में दिख रहा जवान भगोड़ा है और इस वर्ष मार्च से ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। ये अपने परिवार के संपर्क में भी नहीं है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसे वीडियो के झांसे में न आने का आग्रह किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बताया है कि उसने तुर्की के इनुनु विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जेएनयू ने इस बात की जानकारी दी। विश्वविद्यालय ने यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों को देखते हुए लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने टीआरटी वर्ल्ड, जो कि तुर्की का लोक सेवा प्रसारक है, उसके एक्स अकाउंट को देश में प्रतिबंधित कर दिया था। सूत्रों के अनुसार भारत में कथित रूप से पाकिस्तान के लिए झूठा प्रचार करने को लेकर उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई थी। सीमा सुरक्षा बल के जवान पूर्णम कुमार साव को पाकिस्तान ने आज भारत को सौंप दिया। 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद पूर्णम कुमार साव को पाकिस्तानी रेंजरों ने गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों ने कहा कि उन्हें अमृतसर के अटारी संयुक्त सीमा चौकी के जरिए सुपुर्द किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सचिवालय में आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य समस्याओं के समाधान की प्रगति का आकलन करना और नागरिकों की चिंताओं के समाधान में प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना था। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सरकारी ऑफिस में शिकायत करने के लिए डिब्बे लगाए जाएंगे और इसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी।
जो SDM ऑफिसेज में, DM ऑफिसेज में, रजिस्ट्रार ऑफिस में बहुत सारा ग्रीवेंस मैंने पिछले दिनों लोगों का सुना है, तो मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि हम हर एक रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, SDM, DM ऑफिसेज पे अपने कंप्लेंट बॉक्सेस रखवाएंगे, जो कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा हैंडल होंगे। लोग उसमें अपनी समस्याएं लिखित में पर्ची बना के डाल सकते हैं। आप चाहें अपनी आइडेंटिटी बताना चाहें, नहीं बताना चाहें, वो ग्रीवेंसेज मुझ तक सीधा पहुंचेगी और उसको समाधान मिलेगा।
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज 1984 दंगा पीड़ितों की कॉलोनी तिलक बिहार और हरिजन कॉलोनी की विधवा कॉलोनी में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दंगा पीड़ितों की कॉलोनी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सड़कें और पेयजल के काम की शुरुआत आज से हो रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि वो विकास कार्यों की जगह सारा खर्च मीडिया के विज्ञापन में लगाते थे।
1984 के इस कतलेआम की जो कॉलोनी है, जिसको तिलक विहार विधवा कॉलोनी कहते हैं, और ये 80 गज है, जो इन दोनों कॉलोनियों का काम 100% सड़कें नहीं बनाने का काम शुरू किया। आज नाला नाली बनी हो, खड़ंजा बनाओ, पीने की लाइन आई हो, सीवरेज की लाइन नहीं, सारा पैसा या तो केजरीवाल जी खुद खा जाते थे या तो अपने प्रचार में छुपा देते थे।
दिल्ली के ऐतिहासिक दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और सिख धार्मिक संस्थाओं और साहित्य से संबंधित सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन दिल्ली सरकार का आर्काइव्स विभाग करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह प्रदर्शनी दिल्ली के समृद्ध इतिहास के बारे में जनता को जागरूक करेगी। एक रिपोर्ट।
आर्काइव विभाग के पास आजादी से पहले के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, सिख धार्मिक संस्थाओं और साहित्य से संबंधित इतिहास का विशाल संग्रह है। इस प्रदर्शनी में सरकारी दस्तावेज, ऐतिहासिक पत्राचार, पांडुलिपियां, पुराने नक्शे, सिख सांस्कृतिक धरोहर और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल किए जाएंगे। यह प्रदर्शनी दिल्ली के इतिहास को जानने और समझने में लोगों की रुचि बढ़ाएगी। दिल्ली आर्काइव राजधानी के दस्तावेजी इतिहास के संरक्षण में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। दिल्ली सरकार का आर्काइव विभाग एक अभिलेखागार एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। ये विभाग गैर प्रचलित सरकारी रिकॉर्ड्स के वैज्ञानिक संरक्षण, प्रबंधन और नागरिकों को पहुंच प्रदान करता है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली नगर निगम के उपमहापौर जय भगवान यादव ने आज वार्ड संख्या 113 कोंडली क्षेत्र का दौरा कर सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं और पार्कों की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जर्जर हो चुके समुदाय भवन पर अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। श्री यादव ने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष श्री केशव चंद्रा ने कहा है कि NDMC के अंतर्गत विद्यालयों ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अभूतपूर्व परिणाम दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के दौरान NDMC ने अपने छात्रों की सहायता के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की थी। राजधानी के अशोक विहार इलाके में आज एक पुलिस थाने की पहली मंजिल पर आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। मीडिया के साथ बातचीत में अग्निशमन विभाग के अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि अब आग पर जल्द ही पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा।
तो उसमें सारी बिल्डिंग में जो धुआं है वो फैल चुका था, क्रैक हो चुका था, वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं था, सारी खिड़की दरवाजे भी खोले एट द टाइम बीइंग। साथ साथ हमने फायर फाइटिंग भी शुरू कर दी और एक इस रूम के अंदर एक और कमरा है, बाकी तो आपको 100% बुझा दी गई है और अभी थोड़ा धुआं निकलने के बाद थोड़ा पता लगेगा कि कुछ चीज नहीं आ।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर लघु फिल्मों के लिए अपनी 11वीं वार्षिक प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रतियोगिता का उद्देश्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए भारतीय नागरिकों के सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता में सभी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं। NHRC ने एक बयान में कहा कि फिल्में अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में हो सकती हैं, जिसमें अंग्रेजी में उपशीर्षक हों। लघु फिल्म की अवधि न्यूनतम 3 मिनट और अधिकतम 10 मिनट होनी चाहिए। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 31 अगस्त है। लघु फिल्में NHRC shortfilm@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विश्वविद्यालय स्तर के विभिन्न शैक्षणिक विषयों के 80 छात्रों को 1,795 आवेदकों में से चुना गया था। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा है कि भारत ने विश्व स्तर पर सबसे तेज 5G सेवा का शुभारंभ किया है। श्री पेम्मासानी ने कहा कि 2 वर्षों में देशभर में 4,70,000 से अधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS स्थापित किए गए हैं। डॉ. पेम्मासानी ने आज नई दिल्ली में भारत 6G 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए ये बात कही। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को सुरक्षा और राष्ट्र के प्रति विभिन्न सेवाओं से जोड़ने पर बल दिया है। सभी राज्यों में कल राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारियों की बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में सेवा को नए सिरे से परिभाषित करने का उल्लेख किया। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के रूप में अपने अनुभव भी साझा किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तर के अधिकारियों BLO को जल्दी ही मानक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि वे सुचारू रूप से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर सकें। श्री कुमार ने आज नई दिल्ली में हरियाणा, दिल्ली और बिहार के बूथ स्तर के अधिकारियों, निरीक्षकों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के लिए 2 दिन के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ करने के बाद ये बात कही। सरकार ने 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है। आयुष मंत्रालय ने बताया कि गजट अधिसूचना के जरिए ये बदलाव अधिसूचित कर दिया गया है। पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 182 अंक बढ़कर 81,331 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 5089 अंक बढ़कर 24,667 दर्ज हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजित हुई स्पर्धाओं का आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जिम्नास्टिक्स के फाइनल मुकाबलों के साथ समापन हो गया। इस वर्ष नई दिल्ली में शूटिंग, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक्स स्पर्धाएं आयोजित की गईं, जबकि अन्य सभी प्रतियोगिताएं बिहार में हुई। एक रिपोर्ट।
जिम्नास्टिक स्पर्धाओं के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के हर्षित डीन और तेलंगाना की निशिका अग्रवाल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। पुरुषों की वोल्टिंग टेबल फाइनल में महाराष्ट्र के हर्षित ने स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली के अक्षत बजाज ने रजत और उनके राज्य के ही रियान दावत ने कांस्य पदक जीता। कल ऑल अराउंड के फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हर्षित ने आज पुरुषों की फ्लोर एक्सरसाइज और वोल्टिंग टेबल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। महिलाओं की वोल्टिंग टेबल फाइनल में तेलंगाना की निशिका अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र की अनुष्का पाटिल ने रजत पदक जीता, जबकि उनकी टीम की साथी सारा रावल ने कांस्य पदक जीता। निशिका ने महिलाओं की अनइवन बार और बैलेंसिंग बीम स्पर्धाओं में भी 2 कांस्य पदक जीते। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 54 स्वर्ण और 43 रजत के साथ 141 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास 6th सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दी। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक सरकारी कार्यालय में शिकायत पेटी लगाने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 दंगा पीड़ितों की कॉलोनियों में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।